Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Oh, 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 Adiguru. भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति के कुछ भाव को विचार कर रहे हैं। अभ्यास के लिए 36वां श्लोक। भक्तो भक्ति गुणामृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुंभे सम्बतवांग्री पल्लवयुगम संस्थाप्य संवित फलम सत्वं मंत्रमुदीरयन् निजसरी रागार शुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरम् कल्याणमापादयन् आम्नायां बुधिसादमादरेण सुमना संघास्म समुद्यन्मनो मन्थानं हृद्दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुसुपर्ण सुरभिम् चिंतामणिं धीमतां नित्यानंदसुधां निरंतररमा सौभाग्यमातन्वते प्राक्पुण्याचलं प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधा मूर्तिः प्रसन्नशिवा सोमसद्गुणसेवितो मृगधर पूर्णस्तमो मोचकः चेता पुष्करलक्षितो भवति चेद् आनन्दपाथो निधि प्रागल्भेन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्गिका सुचरिता पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलितः कालासुखा विस्कृतः ज्ञानानन्दमहौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते। भक्तो भक्ति गुणामृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुंभे सांबतवांग्रि पल्लवयुगम संस्थाप्य संवित फलम सत्वं मंत्रतु मुदीरयम् निज शरी रागार शुद्धिं वहन् पुण्यहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन्। शंकराचार्य जी लोक व्यवहार में शास्त्रीय कर्म का बहुत महत्व है। उसी शास्त्रीय कर्म जो लोक में बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए उसको लौकिक कर्म भी कहेंगे। प्राय करके हम लोक व्यवहार में घर का निर्माण करते हैं निवास करने के लिए, स्वयं बनाते हैं या बनी बनाई खरीद लेते हैं या भाड़े में ले लेते हैं, चाहे स्वयं बनाया हुआ हो चाहे खरीदा गया हो चाहे भाड़े में लिया गया हो। एक हमारी परंपरा है वैदिक सनातन धर्म की कि उस गृह शुद्धि किए बिना घर में प्रवेश नहीं करते। घर में प्रवेश करने से पहले गृह शुद्धि किया जाता है, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं। और हमारी मान्यता है कि उस घर में सब मंगलमय होता है, फिर उस घर में अशुभ नहीं होता, सभी शुभ हो जाता है, मंगल होता है। क्योंकि न जाने कौन कौन कैसे कैसे व्यक्ति ने उसमें निवास किया है, या जिस जगह पर हमने घर बनाई है, न जाने उस जगह पर कितने प्राणियों के, कैसे कैसे प्राणियों का जीवन अंत हुआ है, उसका दोष उस घर में तो आ ही सकता है। क्योंकि पृथ्वी अनादिकाल से इसी अस्तित्व में है, और इसी पृथ्वी में अनादिकाल से न जाने कितने जीवों का समाधि हुआ है। महात्मा लोग कभी कभी कहा करते हैं वो सृष्टि में अब क्या जानेंगे, आज के 50-100 साल के बाद बद्री केदारनाथ की यात्रा करने वालों को क्या पता, उस मंदिर के अंदर सैकड़ों यात्री मरे थे, ये क्या पता उन लोगों को। लेकिन वो आज सत्य है कि नहीं बोलो। उस केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ अभी जो मिट्टी जमी हुई है 7-7, 8-8 फुट, उस मिट्टी के अंदर सैकड़ों यात्री दबे पड़े, उनकी लाश दबी है। मुझे लगता है कि इतनी आसान से उस मिट्टी को अभी हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल मिट्टी नहीं है उसमें, जो पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उस सबको हटाना बरसों लगेगा। और जब तक उनको हटा पाएंगे तब तक तो लाश सड़ साड़ के केवल हड्डी मिलेंगे, मांस मुंस तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि एक दो दिन में तो हटा नहीं पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। तब इतिहास क्या होगी, वो मिट्टी जहां भी पड़ेंगे लाशों से रंजित मिट्टी होगी ना। ये बात अलग है कि हिमालय अपने आप में पवित्र है और सब यात्री थे, इसलिए वहां कोई गलत व्यक्ति तो था नहीं, दुष्ट व्यक्ति तो थे नहीं। देखो बड़ा विचित्र है रहस्य, जानना बड़ा मुश्किल है, कह देना आसान है, जानना बहुत मुश्किल है। क्या पता ये सारे का सारा वितंडा विभत्स दृश्य किसी एक दुष्ट व्यक्ति के प्रवेश से भी हो सकता था, और एक को दुष्ट व्यक्ति के लिए दंड देने के लिए इतना भी प्रलय हो सकता है भाई, ये तो इतिहास बड़ा विचित्र है। एक दुष्ट को मारने के लिए कई सज्जनों को भी मारा गया है, तो यदि सज्जनों के आश्रय में कोई दुष्ट पनप रहा हो तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन ये परमात्मा ही जाने, प्रकृति जाने, हमारे परिभाषा से कुछ होने वाला नहीं है भाई। एक दुष्ट दुर्योधन को मारने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको मारना पड़ा कि नहीं भाई, बोलो, इतिहास है। भीष्म पितामह में कोई दुष्टता थी? नहीं थी। द्रोणाचार्य में कोई दुष्टता थी? कर्ण में क्या दुष्टता थी? न जाने कितने सज्जनों को मारना पड़ा एक दुष्ट को मारने के लिए, क्योंकि वो दुष्ट उन्हीं सज्जनों के आश्रय में आश्रित होकर और उद्दंड हुआ था और दुष्टता में चरम सीमा में पहुंच गया था, और इनको मारे बिना उसको मारना संभव नहीं था। तो सब ये ईश्वर की जो लीला थी वो वही जाने, हम लोग नहीं जान सकते, अपनी परिभाषा से ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, हजारों निर्दोष तीर्थयात्रियों को मारने में कारण बना कि नहीं हुए घटना। तो इसी तरह ये जमीन है जहां हम खड़े हैं, जहां बैठे हैं, सृष्टि से आज तक जब से पृथ्वी का अस्तित्व हुआ है, न जाने कितने प्राणियों की समाधि हुई है, कैसे कैसे प्राणियों की समाधि हुई है। इस घर में जो मिट्टी का प्रयोग हुआ, ईंट का प्रयोग हुआ है, वो पता नहीं कहां की मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, उससे बना गया ईंट है। इसीलिए गृह शुद्धि बहुत जरूरी है। घर निर्माण हो जाए, घर निर्माण होने के बाद गृह में प्रवेश करने से पहले उस घर में किसी भी निमित्त से प्राप्त अशुद्धि का, वो किसी भी निमित्त से प्राप्त अशुद्धि का निवारण करने के लिए हमारी वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में गृह शुद्धि की एक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा, लौकिक परंपरा है। इसी तरह ये हम आपका जो शरीर बना है, आपका हमारा ये जो शरीर बना है, कि पता नहीं किस प्रकार के अन्नों से बना, किस प्रकार के मेटेरियल से बना है, आपको खुद पता नहीं है। जो अन्न आप खाते हो कहां पैदा किया है, किसने पैदा किया है, जिसने उस अन्न को उत्पन्न किया है, न जाने कितने लेबरों का, पारिश्रमिक का शोषण किया होगा, क्या कर लोगे बोलो है? और जिस खेत में ये अन्न उत्पन्न किया गया है, उसमें उसके जोतते समय में, उसके नलाई करते समय, गुड़ाई करते समय, उस फसल के लिए न जाने कितनी जीव हत्या हुई होगी। खेती करते समय खेत में खड़े होकर देखो तो तुम्हें लगेगा कि इस तरह खेती करके खाने के अच्छा भूखे मर जाना ठीक है। इतनी प्राणी हत्या होती है, इतनी हिंसा होती है। अब उसको रोका भी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अनिवार्य है, खेती करना है तो हिंसा होते होगी होगी, कैसे रोकोगे उसको। और वो अन्न खाओगे और उसी अन्न से बनेगा जो शरीर है, उसमें वो सारा दोष का तो प्रवेश हुआ ही है बाबा। और हम खाने से पहले सावधान तो है नहीं, हमें उन दोषों पर विचार करना फुर्सत कहां। हमको तो भोजन सामने आ गया, खा लिया, बस चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोलते ने अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तुम्हें पता नहीं है, जो अन्न तुम पचाकर पकाकर खाते हो उसमें कितना दोष है, कितना पाप है, विचार करके खाना चाहिए। भाई पुंजते ते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी, भुंजते इति त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन इत्यादि भाव से प्राणाय स्वः अपानाय स्वः समानाय स्वः व्यानाय स्वः उदानाय स्वः पंच प्राणभ्य स्वः भूपतये भुवनपतये भूतानां पतये इत्यादि। भगवत अर्पण बुद्धि से परमात्मा को स्मरण करते हुए, परमात्मा को अर्पण करते हुए, परमात्मा संबंधी यज्ञ करते हुए उसके प्रसाद के रूप में तुम खाते हो, तभी वो अन्न दोष हट सकता है। अन्यथा इस प्रक्रिया के बिना तुम अन्न पकाकर खाते हो तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अन्न नहीं खाते हो तुम, वास्तव में पाप ही को खाते हो। यज्ञ शिष्ट तुम जो अन्न खा रहे हो वह यज्ञ शिष्ट होना चाहिए। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, यज्ञ वही ब्रह्मा, यज्ञ वही शिवा, यज्ञ वही विष्णु। वेद में यज्ञ शब्द का अर्थ विष्णु भी कहा, यज्ञ शब्द का अर्थ शिव को भी कहा है, यज्ञ शब्द का अर्थ ब्रह्म भी कहा है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही शिवा, यज्ञ वही रुद्र, वेद के मंत्र हैं। रुद्र ही यज्ञ है, यज्ञ ही रुद्र है, यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है, और विष्णु को अर्पण किया हुआ ही यज्ञ, महान यज्ञ है वो। और परमात्मा को अर्पण करने के बाद अवशिष्ट शिष्ट बचा हुआ, भगवान की इतनी कृपा है कि हम उनको जो अर्पण करते हैं उस अन्न को, अर्पण किए हुए अन्न को, चाहे किसी भी प्रकार से निमित्तगत दोष हो, उन सारे दोषों को हटाकर शुद्ध करके हमारे लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा उस अन्न को शुद्ध करते हैं उसके बाद स्वयं खा के समाप्त कर दें। कभी देखा है आप लोगों ने, आपके द्वारा अर्पण किया हुआ जो अन्न है, भगवान को अर्पण किया हुआ वो अन्न, आप लोग भगवान को जिमाते हो ना, जमवा आओ सुन तीर वर श्याम ला रहे है? करते हो कि नहीं? आओ जम, भोजन करने के लिए आओ, हे श्याम सुंदर आओ भोजन करो। तो वो भगवान तो खाते तो है ही नहीं, आते जरूर है, खाते कुछ नहीं, करते क्या है? तुम्हारे द्वारा जो उसके सामने अर्पण किए हुआ जो अन्न में, खेत से खलियान, चक्की से चूल्हे तक का जो अन्न में दोष आता है, उन सारे दोषों का अपाकरण कर देते हैं, अन्न को शुद्ध कर देते हैं। इसी को कहते हैं गीता में यज्ञ शिष्ट। परमात्मा को अर्पण किया वो हो गया यज्ञ, परमात्मा के द्वारा शोधित होकर बचा हुआ जो अन्न हो गया वो हो गया यज्ञ शिष्ट, शिष्ट का अर्थ बचा हुआ, और वही प्रसाद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टासीना, जो बचा हुआ अन्न को प्रसाद के रूप में खाता है, असीन माने खाने वाले, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, वे लोग प्रसाद के रूप में खाने वाले लोग अन्न में संबंधित निमित्तगत और ऐसे दोषों के वह सर्वकिल विष, सारे दोषों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, दोष संक्रमित नहीं होता। और यज्ञ शिष्ट बनाए बिना, यदि सीधा ही परमात्मा को निमित्त बनाए बिना सीधा ही कोई अन्न पचन करके खाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में वो अन्न नहीं खाता है, खेत से खलियान और चक्की से चूल्हे तक होने वाले जो जीव हिंसा और दोष है, पाप है, अघ, ये पचन्त्यात्म कारणात् भुञ्जते त्यु अघम पापम, अघम पापम, घोर पाप को ही वो खाते हैं, तो कहां से तुम्हारा, और वही अन्न खाकर बना हुआ जो शरीर होगा, उस अन्न से तीन चीज बनते हैं, दो चीज बनते हैं तुम्हारे उस अन्न से, छंदो के उपनिषद में बताया गया है, भुक्तम अन्नम त्रिधा विभज्यते, खाया गया जो अन्न है वह अन्न का तीन भाग होता है, उसमें से जो स्थूल भाग है वह पुरुषम मल बनकर निकल जाता है, मध्यम भाग से मज्जा बन जाता है, और सूक्ष्म भाव भाग से मन बनता है, और उसी मध्यम भाग से बना हुआ शरीर है मांस अस्थि, इसी प्रकार के जो तेज आप खाते हो उस तेज के सूक्ष्म भाग से वाणी बनती है और मध्यम भाग से हड्डी बनती है, हड्डी तेजस है, घृता तेल जो आप खाते हो उससे हड्डी का विकास होता है। तेजो मही बाक इति आपोमयी प्राण इति, आप जितना शुद्ध जल पियोगे उतने ही प्राण को बल मिलेगा, आप जितने शुद्ध अन्न खाओगे उतने ही शरीर स्वस्थ होगा, और जितने आप घी और तेल आदि का सेवन करोगे सात्विक द्रव्य का उतने ही आपकी वाणी पवित्र होगी, क्योंकि तेजस से वाणी का निर्माण होता है। अब आप दूषित अन्न खाएंगे और उस अन्न के द्वारा बना हुआ जो शरीर होगा वो भी तो दूषित ही होगा ना, और उस दूषित शरीर में रहकर आप शांति से कहां रह पाओगे? आप कहा जाता है किसी घर में भूतों का निवास हो तो उस घर में शांति से कोई न रह पाए, रह पाएंगे? भूत प्रेतों का निवास हो तो उस घर में शांति होगी? रह पाएंगे शांति से? लोग कहते महाराज हमारे घर में भूत का निवास है, कुछ करना चाहिए, क्या करोगे? बोले कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भूत भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। महाराज क्या करना चाहिए? तो हम कहा करते हैं रुद्री लगा दो, चंडी पाठ कर लो, है ये करते हैं कि नहीं? घर शुद्धि के लिए, घर में कहीं अनिष्ट कोई प्रेतात्मा का वास हो है ऐसा लगे तो हम लोग वही करते हैं ना, गृह शुद्धि घर शुद्धि, वो प्रेतात्मा निकल जाए। गोकर्ण जिले में भागवत लगा ली थी, किसको भगाने के लिए? धुंधुकारी को भगाने के लिए। धुंधुकारी की मृतात्मा प्रेतात्मा उसी घर में रह गया, बाप तो जो सन्यासी बनकर चला गया, मां कुएं में मरकर मर गई, कूदकर मर गई, और वो धुंधुकारी उस घर में मरा हुआ था तो वहीं प्रेतात्मा बनकर रह रहा था, भटक रहा था। तीर्थ यात्रा करने वाले गोकर्ण जी तीर्थ समाप्त करके जब घर में आए तो घर में कोई भी नहीं था, न बाप न मां न भाई, अकेले रात को सोए थे तो धुंधुकारी ने तूफान शुरू कर दिया। गोकर्ण जी उठे, चारों तरफ देखते हैं कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, फिर बत्ती निभाई और सो गए, फिर तूफान शुरू हो गया, बत्ती बत्ती जला ली, देखा चारों तरफ कहीं कोई नहीं मिलता है, तो उन्होंने तुरंत जल अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके पूरे घर में जल का छिड़काव कर दिया और कहा कि कौन है तू, कौन है? तो जब उस मंत्र के प्रभाव से गोकर्ण के मंत्र के प्रभाव से धुंधकारी बोलने लगा, दिखा तो है ही नहीं क्योंकि आतिवाहिक शरीर में भटक रहा था उस घर में, स्थूल शरीर में तो था नहीं, तो आतिवाहिक शरीर भी उस घर में भटक रहा था, तो बोल पड़ा मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे इस तरह विषय आसक्त हुआ हुआ देखकर पंचगणिकाओं ने मुझे इस तरह यहां मार डाला, मेरी मां कूदकर मर गई कुएं में, बाप भाग गया सन्यासी बन गया, मेरे दुष्टाचरण का प्रतिफल ये हो गया कि अब मैं प्रेतात्मा होकर यहां भटक रहा हूं, मेरे उद्धार का तुम कुछ उपाय करो भाई, नहीं तो मैं इस घर से शांति से न मैं बैठ पाऊंगा न तुमको रहने दूंगा, है? मेरा उद्धार करो भाई। तो क्या करें? तो भागवत सप्ताह लगाई, और उस घर में सप्ताह लगाने का प्रतिफल यह हुआ कि धुंधकारी की आत्मा को प्रेत बाधा से मुक्ति मिली।